जब याद की बहुत गहरी स्थिति में हम सब होते हैं तो वाणी में आने की इच्छा नहीं होती ना। बाबा कहते हैं अब तुम्हें वाणी से परे चलना है, और जब वाणी से परे की स्थिति में स्थित रहते हैं तो नीचे फिर वाणी में आना थोड़ा कठिन लगता है। बाबा भी वाणी से परे हैं, ऊपर हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ को न केवल बाबा का निमित्त आधार बन के स्थापित किया बल्कि हम सबको अपनी श्रेष्ठ पालना देकर अपने समान बनने के लिए प्रेरित किया कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पिता अब वाणी से परे ऊपर हैं, हमें भी वैसी स्थिति बनानी है। एक प्रश्न है आपसे, आप किसी का कितना देर इंतजार कर सकते हैं? आपसे यदि किसी का इंतजार करना पड़े तो आप किसी का कितनी देर इंतजार कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। भाई साहब ने बता दिया 1 से ज्यादा नहीं किया जा सकता। बाबा हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं? हम किसी का इंतजार 5 मिनट नहीं कर सकते, 10 मिनट नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते। मान लो आपको भट्टी के लिए आना है, आपका साथी भी आपके साथ आने वाला है, अब 5 मिनट हो गए वो नहीं आया, 10 मिनट हो गए वो नहीं आया, 15 मिनट हो गए वो नहीं आया, आप क्या करेंगे? भाई कहते हैं छोड़ो उसको, चलो, होता है ना ऐसा, ठीक है वो आ जाएगा हम चलते हैं। बाबा हमारा पिछले 47 ईयर से इंतजार कर रहे हैं। सोचिए ऊपर बैठकर बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और हम सब मिलकर के वापस घर चलेंगे। बाबा को और कितना इंतजार कराना है, कितना इंतजार कराना है बाबा को और? एक हमारे यहाँ जो भाई हैं जो सबकी कटिंग करते हैं, बाल बनाते हैं, कुछ समय पहले वो योग में उतनी ज्यादा उनकी रुचि नहीं थी, ज्ञान में ठीक है समर्पित हो गए, लेकिन उनको एक बार कहा कि चलो आप भी बाबा के कमरे में बैठो, उनको जबरदस्ती ले गया योग में तो बैठा करो। तो जब वो योग में बैठे तो तुरंत ही योग कक्ष से बाहर निकल आए। उनसे पूछा आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? बोले जब मैं ऊपर गया तो देखा बाबा के बाल कितने बड़े हो गए हैं, दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई, आप लोग ध्यान ही नहीं रखते, मैं अपना किट लेके आता हूँ, बाबा की सेविंग करूंगा, बाल बनाऊंगा। कितने साल हो गए बाबा को वहां बैठे हुए हैं। हंसी में ये बात कही, लेकिन सचमुच बाबा कब से हमारा वेट कर रहे हैं? अब हमें अपने आप से पूछना है बाबा को हम और कितना इंतजार कराना चाहते हैं। बाबा ने पिछली बार एक संदेश में कहा कि वतन में बाबा इंतजार कर रहे हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा, मुझे ये शुभ समाचार देगा कि बाबा मैं तैयार हो गया हूं। कौन देगा बाबा को सबसे पहले ये शुभ समाचार? हा? कौन देगा? कोई आवाज ही नहीं आ रही। शुभ समाचार देने का मतलब ये नहीं है कि हम देह छोड़ के चले जाएंगे बाबा के पास। हम यहां भी तो संपन्न बन के रह सकते हैं ना, हम यहां से ही तो बाबा को ये संदेश दे सकते हैं, हाँ बाबा हम आपके समान बन गए, हम बाप समान बन के भी तो इस सृष्टि पे रह सकते हैं, रह सकते हैं या नहीं? तो कौन संदेश देगा सबसे पहले बाबा को, हा? कौन देगा? जरा हाथ उठाएं, कौन देगा? थोड़े थोड़े हाथ उठ रहे हैं, उमंग हो ना, उत्साह से, हाँ बाबा सबसे पहले मैं आपको ये शुभ समाचार दूंगा कि मैं आपके समान बन गया। लक्ष्य हमारा क्या है, क्या है हमारा लक्ष्य? बाप समान बनना। तो जो लक्ष्य है उसे हम कब अपने स्वरूप में अपने जीवन में लाएंगे? जब बनना ही है बाप समान तो क्यों नहीं अपने बीसों नाखूनों का जोर लगा के हम इस कार्य में लग जाते, अपनी संपूर्ण शक्तियां क्यों नहीं लगा देते? बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। यदि मुझे बाप समान बनना है तो एक कार्य मैं करना शुरू करूं, उनके साथ रहना शुरू करें। एक संकल्प हमेशा रहता है कि सारे कल्प तो हम इसी साकार सृष्टि में रहेंगे, क्यों ना अब इस अंतिम जन्म में संगम युग की बची हुई थोड़ी सी घड़ियों में हम ऊपर रहें अपने बाबा के पास, हो सकता है? सारे कल्प तो इस साकार सृष्टि में ही रहना है, क्यों ना संगम के इस थोड़े से बचे हुए समय में अपने इस अंतिम जन्म में हम ऊपर रहें। जरा विचार करके देखें कि सूक्ष्म तन में कितना आनंद होगा कि बाबा वहां से नीचे ही नहीं आना चाहते, परम धाम में कितना आनंद होगा कि शिव बाबा वहां ही जमे रहते हैं, वो नीचे ही नहीं आते। इस दृष्टि से हम सोच सकते हैं, और यही वो संगम युग है जबकि हम ऊपर के लोगों का आनंद ले सकते हैं, ऊपर के लोगों को जान सकते हैं कि वो कैसे हैं, वहां की फीलिंग्स क्या हैं, वहां की स्थिति क्या है, वहां कैसी अनुभूति होती है। तो क्यों ना हम सब, यदि हमें बाप समान बनना है, बाप समान बनने का लक्ष्य है, तो ऊपर रहना शुरू करें। इजी है या नीचे वाले खींच लेते हैं आपको बार बार? हाँ? जी क्या है हाल बहनों का, हाँ? कि नीचे आओ, खाना कौन बनाएगा, तुम ऊपर बैठी रहोगे तो? ऐसा तो नहीं ना, ऊपर बैठ के भी तो खाना बनाया जा सकता है, है ना? बाबा के साथ बाबा की मदद ली जा सकती है। तो इस पर भी बहुत गहराई से आप विचार कीजिएगा, सारे कल्प तो इस साकार सृष्टि में ही रहना है, क्यों ना अब हम ऊपर का आनंद लें, सूक्ष्मतन में बाबा के साथ रहें, परम धाम में अपने शिव बाबा के साथ रहें। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन यदि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है तो मैं क्या करूं? पांच चीजें ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं जो बहुत बेसिक हैं, मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सब इस पे बहुत विस्तार से विचार कीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत सिंपल बातें, बेसिक बातें जो मुझे बाप समान बनाने वाली हैं, ठीक है ना? ठीक है, बरसात हो रही है, प्रकृति खुश हो रही है, हा? चलो अच्छा है, आप सब बाप समान बनेंगे तो यहाँ जो भी परेशानी है पानी की वो दूर होगी ना, ठीक है ना? वाइब्रेशंस भी हम प्रकृति को बहुत अच्छी देंगे। तो बेसिक बातें आज के इस चर्चा में कि कैसे हम बाप समान बने, पांच विशेष बातें संसार में भी ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली विशेष बात, ब्रह्मा मुहूर्त, लोग उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं लेकिन वास्तव में वो है ब्रह्मा मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त जिसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, ऐसा मुहूर्त जिसने ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बनाया, ऐसा मुहूर्त जिस समय स्वयं परमात्मा वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, उस ब्रह्मा मुहूर्त के समय को हम अमृत वेला कहते हैं ना। सुबह का समय है, ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। यदि मम्मा के जीवन को देखें, बाबा के जीवन को देखें, इन्होंने इस ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। मम्मा भी सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के साधना करने लगते थे, बाबा भी सुबह उठ करके बैठ जाया करते थे। जगदीश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब कभी भी मैं बाबा के कमरे के पास से गुजरता था, बाबा को साधना करते हुए ही देखता था। कई बार वो कहते थे कि मैं सोचता था कि मैं पहले बाबा से उठूंगा, मैं 2 बजे उठ के चला जाऊं, 1:30 बजे उठ के चला जाऊं, 3 बजे उठ के चला जाऊं। जब भी जाता था देखता था बाबा तपस्या में बैठे हुए हैं। ये ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात अमृत वेला हमारी पूरी दिनचर्या की नींव है, हमारे पूरे जीवन की भी नींव बनती है और हमारे एक दिन की, उस दिन की भी नींव बनती है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होती है तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए रोज सुबह उठने का एक अच्छा संकल्प यहां से लेकर के जाएंगे। हमें सुबह उठना है, कोई बहाने नहीं। यदि बाबा के जैसा बनना है तो हमें बाबा ने जिन चीजों को महत्व दिया उसे अपने जीवन में अवश्य लाना है। बाबा ने कहा है, बाबा के महावाक्य मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। बाबा ने कहा है जो जितना जल्दी सुबह उठते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, वो उतना जल्दी ही नई दुनिया में आते हैं, और जो जितनी देर से उठते हैं, आगे मैं नहीं कहूंगा। हम सब सबसे पहले आना चाहते हैं ना, कोई भी नहीं चाहता कि हम देर से आए, कोई भी नहीं चाहता कि हम राम सीता बने, कोई नहीं चाहता हम त्रेता युग में आए। तो बाबा ने सीधा सीधा कहा है जो जितना जल्दी अमृत वेला उठते हैं उतनी जल्दी ही वो नई दुनिया में आते हैं। बाबा ने ये भी कहा है अमृत वेला तुम बाबा से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम 8 में आना चाहते हो, 108 में आना चाहते हो, कोई भी बाबा से वरदान लेना चाहते हो, अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हैं, खामियां हैं, उनके लिए क्षमा लेना चाहते हो, सब चीजें अमृत वेले ब्रह्मा मुहूर्त में बाबा करने को खाली बैठे होते हैं। भगवान ने हमें अपॉइंटमेंट दी है उस समय जबकि वो हमें शक्तियों से, गुणों से श्रृंगारते हैं, सजाते हैं। मैं देखूं मैं उस समय को कितना महत्व देता हूं। हमारी दादियां, भले ही आप मधुबन जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, आप देखते हैं दादियां हमारी 90 के आसपास हो गई हैं। दादी जानकी जी तो 100 की ईयर की होने वाली हैं, लेकिन अब भी आप देखते होंगे दादी आकर के सुबह अमृत वेले योग कराती हैं। मैंने देखा हमारी जो दादियां हैं, भूरी दादी थी या भोली दादी थी, सुबह से जाकर के बाबा के कमरे में बैठ जाया करती थी, तो लगता था कि इन्होंने अपनी तपस्या को कितना मजबूत बनाया है, अपनी इस धारणा को कितना मजबूत बनाया है। और जिसने अपने अमृत वेले को, अपने इस ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत मजबूत किया, उसका कार्य बहुत सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए इस बात को हम विशेष अंडरलाइन अवश्य करेंगे। एक कुमार ने अपने रूम में ही, उसे नींद बहुत आती थी, तो अपने रूम में ही उसने एक बहुत बड़ा स्लोगन लगा रखा था अपनी ठीक खाट के सामने ही। जब उठता था तो ठीक उसकी नजर पड़ती थी, क्योंकि उसे नींद बहुत आती थी। तो उसने बड़ा सा स्लोगन लगा रखा था कि तुम्हें भगवान से रजाई लेनी है, इसलिए रजाई को लात मारनी है। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती थी वो देखता था, फट से अपनी रजाई को लात मारी और उठ के बैठ गया। ऐसी चीज होनी चाहिए, आलस्य और अलबेलापन नहीं। ये नहीं कि 5 मिनट हम और सो लेते हैं, वो 5 मिनट कभी पूरा नहीं होता, वो पांच मिनट सीधे पांच बजा देता है, है ना, अमृत वेला पूरा हो जाता है, फिर आंख खुलती है हमारी। इसीलिए हम इसे अंडरलाइन करेंगे। और साथ ही न केवल इस ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, लेकिन इस मुहूर्त में उठकर बहुत गहरी साधना करना, जागती ज्योत होकर के बैठना। क्योंकि जब जागती ज्योत होकर के बैठेंगे तभी बाबा से सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। कई बार ठंड के दिनों में हम इतना लपेट के बैठे रहते हैं, मुंह हाथ भी ठीक से नहीं धोते कई बार, क्योंकि ठंडी होती ना, ठंडी बहुत होती है, पानी बहुत ठंडा होता है, तो केवल थोड़ा सा पानी लेके अपनी आंखों में लगा लेते हैं, है? और एकदम लपेट के बैठ जाते हैं कि बस आंख दिख रही होती है। तो मुझे कई बार हंसी आती है, बाबा भी बहुत ध्यान से देखते होंगे कि ये है कौन, बस आंखें दिखाई दे रही है कि आखिर ये बच्चा है कौन, है ना। ऐसे नहीं, फ्रेश होकर अपने बिस्तर से नीचे उतरकर, नीचे बाबा का रूम है तो वहां पे या अलग से किसी आसन पे बैठ करके बहुत अच्छी तरह अमृत वेला करें। आप पाएंगे कि आपका पुरुषार्थ बहुत इजी होता जा रहा है। आज सुबह भी जब हम लोगों ने अमृत वेला किया तो बाबा उसमें एक महावाक्य कह रहे थे कि जो अमृत वेले को महत्व देता है वो हमेशा बाप दादा के दिल तख्त पर रहता है, बाबा के दिल तख्त पर। और ये प्रथम ईश्वरीय आज्ञा है ना, इसलिए इस आज्ञा को हम बहुत अंडरलाइन करेंगे। तो यदि मुझे बाप समान बनना है, बहुत बड़ी बातें नहीं, शुरुआत मैं करूंगा ब्रह्मा मुहूर्त से। सुबह मुझे उठ करके गहरी साधना करनी है। चलिए
ज्ञानी बनो, योगी जीवन सचारा, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन सचारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
बाबा हमें अमृत भी बांटते हैं, अमर भाव का वरदान भी देते हैं, तो हम इसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देंगे। इस भट्टी से यदि किसी का ब्रह्मा मुहूर्त, किसी का अमृत वेला कमजोर है, संकल्प लेके जाएंगे आज से मैं अपने इस ब्रह्मा मुहूर्त को पूरा महत्व दूंगा, और इस समय उठकर बाबा से स्वयं में वरदान भी भरूंगा और बाप समान भाव का वरदान बाबा से अवश्य प्राप्त करूंगा। दूसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा ज्ञान। लोग इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं लेकिन है ये ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा ज्ञान अर्थात वो ज्ञान जो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख कमल से दिया, ब्रह्मा के मुख कमल से दिया गया ज्ञान, जिसे हम बाबा की मुरली भी कहते हैं। बाबा ने इस ब्रह्मा ज्ञान को अर्थात मुरली को भी अपने जीवन में बहुत बहुत महत्व दिया है। बाबा हमेशा कहते हैं, और आपने सीनियर के मुख से भी सुना होगा कि मम्मा मम्मा कैसे बनी, मुरली के आधार पे। दादियां दादियां कैसे बनी, मुरली के आधार पे। इसलिए जानकी दादी जी एक बार पूछ रहे थे सभी से कि आप ये बताएं कि आप ब्राह्मण हैं या गोप गोपियां हैं, कौन हैं? हाँ जी, गोप गोपियां हैं। क्या अंतर है ब्राह्मण और गोप गोपियों में? दादी ने कहा कि ब्राह्मण तो सभी हैं, बाबा के बने तो ब्राह्मण बन गए, लेकिन गोप गोपियां कोई कोई हैं, और वो हैं जो मुरली की तान में झूमते हैं, जो मुरली के बिना नहीं रह सकते। दादी अपना अनुभव भी शेयर करती हैं कि जब सभी दादियां बाबा के पास आ गई थीं, दादी जानकी जी को 1.5 साल पौने 2 साल लेट हो गए थे बाबा के पास आने में, और जब अपियों के चेहरे बहुत डिवाइन हो गए हैं, बहुत दिव्य हो गए हैं, अलौकिक हो गए हैं, वो मौलाई मस्ती में झूम रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। मैं कितनी देर से आई, 1.5 पौने 2 वर्ष ही लेट हुए थे उनको आने में, लेकिन उनको लगा कि मैं कितनी देर से बाबा के पास आई हूँ और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। दादी कहती हैं, मैं बाबा के पास गई, बाबा से पूछा कि बाबा मैं अपने इस समय को कैसे कवर करूं, मुझे 1.5 वर्ष लेट हो गए आपके पास आने में, अब मैं अपनी अवस्था ऐसी कैसे बनाऊं जैसे कि इन दादियों की अवस्था हो गई है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची रोज 12 बार मुरली पढ़ा करो। और दादी कहती हैं कि मैंने 12 बार नहीं, मैंने 24 बार मुरली पढ़नी शुरू कर दी। दादी कहती 6 मास तक मैं सोई नहीं, मुरली पढ़ती थी, उसका मनन चिंतन करती थी, वही बेंच होता था, थोड़ा सा लेट गई, फिर उठी, फिर मुरली का अध्ययन किया और फिर से मनन चिंतन किया। मुरली को बहुत गहराई से अध्ययन करना उन्होंने शुरू किया। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि दादी केवल 1.5 पौने 2 वर्ष लेट आई थी और इतना लेट आने के बाद 6 मास तक वो सोई नहीं, उनको इतनी धुन लग गई कि मुझे अब तपस्या और साधना करनी है। हम बाबा के पास कितने लेट आए हैं, वो 2 वर्ष लेट आने के बाद भी 6 मास नहीं सोए, हम इतने लेट आए हैं फिर भी बड़े आराम से सोते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना सोए, लेकिन आत्मा तो जागृत अवस्था में रहे, आत्मा में तो लगन की अग्नि प्रज्वलित रहे कि नहीं, मुझे सब कुछ बाबा से प्राप्त करना है और जिस समय को मैंने मिस किया है इस संगम युग के, उसे अच्छी साधना करके कवर करना है। तो दादी ने 24 बार मुरली पढ़ी, उसका गहन मनन चिंतन किया। तो आज देखें कि दादी कहाँ पे है ना, ब्रह्मा ज्ञान का महत्व। दादी भी बंधन में थी, परिवार में थी, लेकिन वहां से अपने बंधन तोड़ के आए और उस मुरली को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। आज देखें दादी इस विश्वविद्यालय की चीज है ना, बड़ी है, हम सबकी आदर्श है, प्रेरणा मूर्ति है। आधार क्या बना, ब्रह्मा ज्ञान, बाबा की मुरली। यदि हम भी अपने जीवन को उसी शिखर पर देखना चाहते हैं, हमें भी इस ब्रह्मा ज्ञान को वैसा ही महत्व देना होगा। ब्रह्मा बाबा को देख लें, कोई भी ट्रेन से सफर करके बाबा के पास पहुंचता था मधुबन, तो बाबा पहला प्रश्न यही करते थे कि बच्ची आज की मुरली पढ़ी, आज की मुरली सुनी, और जब बच्चे ना कहते थे तो बाबा कहते थे पहले जाकर के मुरली पढ़ के आओ, उसके बाद बाबा मिलेंगे। इतना महत्व मुरली का कि बाबा ने एक दिन भी अपने जीवन में मुरली मिस नहीं की सुनाना। अपने जीवन के अंतिम दिन में भी बाबा ने मुरली सुनाई, भले शाम को रात को सुनाई, उसके बाद वो अव्यक्त हुए। तो जिस चीज को ब्रह्मा बाबा ने इतना महत्व दिया है, उस चीज को भी यदि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो महत्व देना होगा। इसलिए मुरली को भी यदि हम संधि विक्षेप करते हैं तो ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। मां अर्थात जो मेरे जीवन में मधुरता लाने वाली है, जो मुझे महानता की ओर ले चलने वाली है, है ना, यही मुरली है ना, जो मेरे जीवन को भी मधुर बनाती है, मुझे महानता की ओर ले चलती है। अर्थात जो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली है, मुझे उदाहरण मूर्त बनाने वाली है। अर्थात जो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाती है, जो मुझे राजयोगी बनाने वाली है, जो मुझे विश्व की राजाई देने वाली है। अर्थात जो हमें हमेशा लक्ष्य की स्मृति दिलाती है कि क्या बनना है तुम्हें, क्या बनने के लिए बाबा के पास आए हो, और ई अर्थात जो हमें ईश्वरीय नशे में डुबा देती है, जो हमें ईश्वर के बहुत नजदीक ले जाती है, ये है मुरली। और जो इसे महत्व देता है वो सचमुच अपने जीवन को श्रेष्ठता के पथ पर ले चलता है। इसीलिए हम इस ब्रह्मा ज्ञान को भी अंडरलाइन करेंगे। और केवल मुरली हमें सुननी नहीं है, लेकिन मुरली को जब भी आप सुनते हैं चार स्टेप्स जरूर फॉलो करें। कल भी जब आप मनन चिंतन करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी मुरली सुने चार स्टेप्स जरूर फॉलो किया करें। पहला स्टेप है मुरली सुनना और सुनाना, जो हम में से अधिकांश लोग करते हैं रोज। बाबा के बच्चे अधिकांश 90% मैं कहूंगा मुरली जरूर सुनते हैं, मुरली को महत्व देते हैं। लेकिन मुरली को किस विधि से हमें सुनना है ताकि हम ब्रह्मा बाप समान बने? पहला स्टेप मुरली सुनना, दूसरों को सुनाना, जो हम करते हैं। लेकिन उससे आगे के स्टेप पे हमें चलना है, मुरली को समझना। जब हम उस पे विचार सागर मंथन करते हैं, जब आप विचार सागर मंथन करते हैं, तभी आपको वो बात समझ में आती है कि ये बात क्या है, क्या है ये चीज। वो समझने के लिए हमें बहुत गहराई से उस पे विचार सागर मंथन करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे गाय से सीखो, गाय भी घास खाती है और एकांत में जाकर बैठ के उसे जुगाली करती है, उगारती है, तब जाकर के वो हजम होता है। बाबा भी कहते हैं कि तुम सब मेरी गौवे हो, गाय हो, और बाबा रोज रोज सुबह सुबह तुम्हें ज्ञान घास खिलाते हैं, है ना। तो ज्ञान घास खाने के बाद क्या करना है, उसे उगारना है, मनन चिंतन करना है। तो दूसरा स्टेप है, यदि मुझे बाबा की मुरली को समझना है कि बाबा क्या कह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे विचार सागर मंथन करना होगा। तीसरा स्टेप है अनुभव करना। और अनुभव कब होगा, अनुभव कब होगा, कैसे होगा अनुभव? हम सब चाहते हैं कि हम अनुभव करें, अनुभवी मूर्ख बने, लेकिन अनुभव कब होगा जी? अनुभव में तब आएगी बात जब हम ज्ञान को प्रयोग करेंगे। जब तक आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते तब तक आपको वो चीज अनुभव नहीं देती। कोई आपको कितना भी कह दे कि नमक जो होता है वो मीठा होता है तो आप मानेंगे? या ये कहे कि नहीं ये जो चीनी होता है ये खारा होता है, आम जो होता है वो बहुत खारा होता है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने खुद उसे खा के देखा है, टेस्ट किया है। जब हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो हमें अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के हजार कदम मेरे। ये बात मैं सबको सुनाता हूं, लेकिन क्या ये बात मेरे अनुभव में है? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट आया कि मैंने हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाया और बाबा की हजार गुना मदद का मैंने अनुभव किया? बाबा ये भी कहते हैं, तुम मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। इस बात का मेरे पास कितना अनुभव है? बाबा ये कहते हैं कि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में कहीं भी स्थित हो जाओ, उस स्थान का वातावरण पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इस बात का मुझे कितना अनुभव है? जो प्रयोग करेंगे ज्ञान का वो इनके अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। तो ज्ञान का प्रयोग करने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमें ज्ञान का प्रयोग करना है ताकि अनुभवी मूर्ख हम बनते जाएं। और चौथा स्टेप है स्वरूप बन जाना। जो बाबा कह रहे हैं उसे अपने जीवन में साकार कर लेना, स्वरूप बन जाना। कई बार हम ये सोचते हैं, कई बच्चे ये कहते हैं कि बाबा रोज रोज एक ही बात क्यों सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं बाबा? बच्चे आत्माभिमानी बनो, मुझे याद करो, तुम ये करो, क्यों सुनाते हैं रोज रोज, क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अब तक हम स्वरूप नहीं बने हैं, और जब तक स्वरूप नहीं बने हैं तब तक बाबा वो बात हमें सुनाएंगे भी, और तब तक हमारी बातों का असर भी दूसरों पर नहीं होगा जब तक हम खुद स्वरूप नहीं बने हैं। इसीलिए ज्ञान स्वरूप बनने के लिए है। ये विश्वविद्यालय और सत्संगों की तरह नहीं है, बाबा कहते हैं, जहां गए और कथा सुना और वापस आ गए, है ना। जैसे पंडित जी की भी बात कहते हैं ना, पंडित जी भी ये कहा करते थे कि राम का नाम लो तो नदी पार कर जाओगे। अब ग्वालन तो पार हो जाते थे लेकिन ये पंडित जी डूब गया जाके क्योंकि ये केवल कहते थे, करते नहीं थे, स्वरूप नहीं बने थे। हमें स्वरूप बनना है, क्योंकि जब हम स्वरूप बनेंगे तभी हमारी बातों का असर सामने वालों पर होगा। वो कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी के पास भी कोई माता अपने बच्चे को लेके आ गई, कहा कि बापू ये बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा एक हफ्ते के बाद इसको लेकर के मेरे पास आओ। जब एक हफ्ते के बाद उसकी माँ लेके आई तो उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसा है कि ज्यादा गुड़ मत खाया करो, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, या ज्यादा चीनी मत खाया करो, ये कहा हो। उस माता जी ने कहा ये बात तो आप एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने कहा पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था बहुत, तो मैं कैसे उस बच्चे को कहता, और यदि मैं कहता भी तो उसका असर भी उस पर नहीं होता, है ना। इसीलिए हम स्वरूप बने तो मुरली अर्थात ब्रह्मा ज्ञान को हम इस रूप में सुने, अपने जीवन में उसे उतारते चलें, उसके स्वरूप बनते चलें, तो हम जल्दी से जल्दी बाप समान बनते चलेंगे। कम से कम डेली के मुरली से हम एक पॉइंट जरूर अपने पास रखा करें। इस वर्ष के लिए हम लोगों ने अपने पास एक लक्ष्य रखा है कि हम डेली के मुरली से, जब ये 2015 शुरू हो रहा था तो हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया था मधुबन में अपने ग्रुप में कि हम रोज की मुरली से कम एक पॉइंट जरूर अपने जीवन में धारण करेंगे। एक पॉइंट लेंगे मुरली से, ज्यादा नहीं, और उसे उस दिन बहुत गहराई से चयन करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लक्ष्य ये था कि जब 2015 पूरा होगा तो 365 सुंदर धारणाओं से हमारा जीवन सज गया होगा, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन वर्ष के अंत में जब आप अपने आप को देखेंगे कितनी सुंदर आपके जीवन में धारणाएं होंगी। ऐसे एक सिंपल अपने लिए प्लान बनाएं, मुरली की ज्यादा नहीं तो एक पॉइंट मुझे जरूर अपने जीवन में उस दिन की मुरली से धारण करना है, ये लक्ष्य रख लें। तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा बाबा से जुड़ा हुआ है ना। हसी में हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन जुड़ा हुआ है, और कोई डिपार्टमेंट ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा का ट्रांसपोर्ट, ब्रह्मा बाबा का एकोमोडेशन, या ब्रह्मा बाबा का और दूसरा डिपार्टमेंट, नहीं, ब्रह्मा भोजन जुड़ा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में। एक महावाक्य मैं आपके सामने रखता हूं बाबा का। बाबा ने कहा है यदि तुम योग युक्त होकर भोजन बनाओगे और योग युक्त होकर भोजन खाओगे तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही हो जाएगा। आधा पुरुषार्थ अर्थात संपन्नता का जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक की जो आधी यात्रा है केवल इस एक धारणा से पूरी की जा सकती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। यदि तुम योग युक्त होकर के भोजन बनाते हो और योग युक्त होकर भोजन खाते हो, तुम्हारी आधी यात्रा ऐसी ही पूरी हो जाएगी संपूर्णता के पथ की। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम भोजन बनाए बाबा की याद में मग्न होकर बनाए, बहुत अच्छे से स्वमानों की प्रैक्टिस करते हुए बनाएं, बाबा का आह्वान कर लें कि बाबा आप भी आएं, इसमें शक्ति भरें, बल भरें। बाबा एग्जांपल देते हैं श्रीनाथ द्वारे का कि जब वहां भोग बनाया जाता है तो मुख में वो पट्टी बांध लेते हैं, साइलेंस में याद में रह करके भोजन बनाते हैं अर्थात भोग बनाते हैं। हम भी जब बाबा के लिए भोग बनाएं, भोजन बनाएं, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं बाबा के लिए बना रहे हैं ना, बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो जब भी भोजन बनाए बहुत गहरी याद में अच्छे स्वमान में स्थित होकर के बनाएंगे। और जब खाएंगे तो भोजन बनाने वाला डिपार्टमेंट तो पूरा हो गया, माताएं कर लेंगी, जब खाएंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे? योग युक्त होकर खाएंगे। क्या एक संकल्प हम ले सकते हैं आज के इस भट्टी से कि हम मौन रहकर बाबा की याद में भोजन करेंगे? लिया जा सकता है? कौन कौन है जो मौन रहकर भोजन करते हैं? बहुत अच्छा, कम है, लेकिन संकल्प ये जरूर ले। सारे दिन तो हम वाचा में आते ही है ना, बोलते ही है ना। भोजन के समय ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम बोलते बोलते खाएं? ठीक है, कभी हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, किन्हीं बड़े गेस्ट के साथ हमें बैठना पड़ता है, परिस्थिति देख करके आप वाचा में आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये लक्ष्य रखा जाए कि हम मौन में रहकर बाबा के साथ बैठकर भोजन करें। इसे यदि आप आनंददायी बना लेते हैं, क्यों बाबा इसे महत्व देते हैं? आपने सुना होगा बाबा कहते हैं कि यदि तुम याद में भोजन नहीं करोगे तो भोजन कौन खा जाएगा? माया खा जाएगी। तो कहां से आ जाती है माया? क्यों बाबा ये बात कहते हैं? क्योंकि भोजन में सबसे ज्यादा ग्रहण शक्ति है, और जब जिन संकल्पों के साथ आप भोजन करते हैं वो संकल्प उस भोजन में समा जाते हैं, और वही भोजन आपके अंदर रहता है। डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं, 15 से 16 घंटे तक वो भोजन आपके अंदर रहता है। जिस संकल्प के साथ आपने वो भोजन किया है वही संकल्प आपको बार बार आते रहते हैं, उससे आप प्रभावित होते रहते हैं। और ये भी कहा जाता है उस भोजन से ही खून बनता है ना, तो यदि उस भोजन में रग रग में बाबा की याद कैसे समाएगी? जब उस भोजन को करते समय मैंने बाबा की याद में खाया है, जब वो भोजन बिल्कुल रस बन के हमारे रक्त में समाएगा तभी तो रग रग में बाबा की याद आएगी ना। इसलिए भोजन करते समय 15 मिनट का समय बहुत याद में रहकर खाएं, तो अगले 15 घंटे तक वो आपको योग युक्त रहने में मदद करेगा, बाबा की ओर खींचता रहेगा आपको। इसे करके देखें। कैसे करेंगे भोजन करते समय? बाबा के साथ बैठें, बाबा से सर्व संबंधों का सुंदर अनुभव कर सकते हैं आप। ऐसा ना हो कि भूख लगी हुई है तो अपने थाली लिया, बाबा को दृष्टि दे के भोग स्वीकार किया, और बाबा को खिलाने के बाद खुद ही शुरू हो गए कि बाबा आप खा लिए, आप किनारे बैठ जाइए, अब मेरी बारी है। ज्यादातर ऐसा होता है ना, भोग लगाया, ओके बाबा अब मेरा है सब कुछ, अब मैंने शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, वैसे भी कहते हैं जो हेल्थ वाइज भी चबा चबा के खाना बहुत अच्छा होता है, वो लोग तो 32 बार चबाने को कहते हैं। चलो 32 ना भी चबाओ तो भी कम से कम हम बाबा की याद में रहते हैं तो उसे अच्छे से चबाने का आनंद भी बहुत आता है। क्या अभ्यास कर सकते हैं आप इसमें? मैं बाबा की गोद में बैठा हुआ हूँ, एक गिट्टी बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं बाबा को एक गिट्टी खिला रहा हूँ, है ना। अलग अलग संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, कभी माँ मुझे खिला रही है मैं माँ को खिला रहा हूँ, कभी पिताजी मुझे खिला रहे हैं मैं अपने बाबा को खिला रहा हूँ, कभी साजन मुझे खिला रहे हैं मैं अपने साजन को खिला रही हूँ। अलग अलग संबंधों का ऐसे अनुभव करें, रस भरेगा इससे भोजन में, और योग युक्त होकर के भोजन करने का आप आनंद ले पाएंगे। कभी आप ऐसे भोजन कर सकते हैं, एक गिट्टी ली उसे सूक्ष्मतन का नाम दे दिया और सूक्ष्मतन का अनुभव किया, जब तक वो मुख में है सूक्ष्मतन का अनुभव किया। दूसरी गिट्टी ली परम धाम का अनुभव किया। तीसरी गिट्टी ली अपने यहाँ स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग का आनंद लिया, अनुभव किया। चौथी गिट्टी ली अपने मध्य स्वरूप का अनुभव किया। ऐसे अलग अलग स्थानों पर आप जब तक वो मुख में है चबा रहे हैं, आप अलग अलग स्थानों का अनुभव करते हुए खाएं, आपको बेहद आनंद आएगा। लेकिन ब्रह्मा भोजन को हमें उसके महत्व के साथ स्वीकार करना है, जैसे बाबा इसे महत्व दिया करते हैं। मुरली में भी आपने सुना होगा बाबा कहते हैं कि बाबा भी याद में रह के खाने की या भोग बाबा की याद में स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तुम बच्चों को भी ऐसा करना है, हो सकता है। तो आज जब शाम को सभी भोजन करेंगे तो कैसे करेंगे? मौन में रह के, संभव है? कौन कौन ये सोचते हैं कि ये संभव है, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर, शुक्रिया। मौन में रहकर हम भोजन स्वीकार करेंगे। ठीक है, चौथी बात जो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बाबा ने जिस चीज को इस ज्ञान में सबसे ज्यादा महत्व दिया है वो है हमारी पवित्रता, हमारा ब्रह्मचर्य। बाबा के पास लोग आया करते थे जब ज्ञान की शुरुआत हुई तो, क्योंकि ये नई बात थी, संसार में ऐसा कोई कहता ही नहीं था। साधु संत भी कहते थे कि ठीक है गृहस्थ में हो संयम के साथ रहो, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ था जो ये कहता हो कि गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब बाबा ने ये कहा तो लोग उनके पास आ गए, कहा कि बाबा आपकी सब बातें बहुत अच्छी हैं, बस ये जो आप ब्रह्मचर्य वाली बात कहते हैं ना, इसे आप थोड़ा हल्का करो, इसे आप हल्का करेंगे तो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आपके पास आएंगे, इसके कारण घर घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, तो बाबा आप ये जो ब्रह्मचर्य वाली बात है उसे थोड़ा हल्का करो। बाबा ने क्या कहा उनको? बाबा ने कहा, जब उन्होंने ये कहा कि बाबा आप ब्रह्मचर्य की धारणा को हल्की करेंगे तो आपके पास करोड़ों लोग आएंगे, तो बाबा ने कहा बाबा को भेड़ बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, बाबा को शेर और शेरनिया चाहिए जो दहाड़ कर सके, है ना। तो यहां सब कौन बैठे हुए हैं? शेर और शेरनिया बैठे हैं, तो शेर शेरनिया अपने लिए तो तालियां जरूर बजा ले। हम वो शेर शेरनिया हैं, हम वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को धारण करने का, इसे अपने जीवन में अपनाने का श्रेष्ठ संकल्प किया है, दृढ़ प्रतिज्ञा की है, और यही हमारी महानता है और यही हमें महानता के शीर्ष पर भी ले जाने वाली है। बाबा जब इस सृष्टि पे आए तब भी उन्होंने पहली बात यही कही थी कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। इतना महत्व बाबा ने पवित्रता की धारणा को दिया। बाबा ने यह भी कहा कि इस ज्ञान की नवीनता ही है तुम्हारी पवित्रता, इस ज्ञान की पब्लिसिटी ही है तुम्हारी पवित्रता, इस ज्ञान का सारे संसार में प्रख्यात होने का और तुम आत्माओं के भी सारे संसार में प्रख्यात होने का आधार ही बनेगी ये पवित्रता। पवित्रता ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है। ये है तो ब्राह्मण जीवन है, ये नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस धारणा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ये कहा धरत परिये धर्म ना छोड़िए। हम भी अपनी इस धारणा को बहुत स्ट्रांग करें। बाबा का एक साकार महावाक्य जिसने मुझे बहुत दिल को छुआ, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा बाप तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है, क्या तुम अपने बाप को अपवित्रता की भीख नहीं देंगे? सी बाबा सामने बैठकर हमसे अपवित्रता की भीख मांग रहे हैं, किस लिए? ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, हमारा जीवन संवर जाए। बाबा को क्या मिलेगा इससे? वो तो स्वयं पवित्रता के सागर हैं, वो हमारे जीवन को निखारना चाहते हैं, वो हमें दिव्य गुणों से श्रृंगारना चाहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र पे ठहरता है, तो जिसका पात्र पवित्रता से बना हुआ है अर्थात दिव्य बुद्धि है जिसके पास, पवित्रता के आधार पे ही हमारा जो ये पात्र है, बुद्धि रूपी पात्र है, वो दिव्य और पवित्र होता है, शुद्ध होता है और उसी पात्र में ज्ञान ठहर पाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान एक कान से सुना दूसरे से निकल रहा है, ठहर क्यों नहीं रहा है? हमें ये चेक जरूर करना है कि हमारी पवित्रता कहीं कम तो नहीं है। मन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मा बाबा को हमारी तरफ से गिफ्ट होना चाहिए और यही हमें ब्रह्मा बाप समान बनाने वाला है। यदि कहीं पवित्रता में थोड़ी बहुत कमी हमें लग रही है, क्या अभ्यास कर सकते हैं? कुछ सुंदर संकल्प अपने पास जरूर रखें। एक दृढ़ संकल्प तो जरूर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी इस पवित्रता को बहुत दृढ़ रखना है। मन में कभी फ्लक्चुएशन आया भी तो भी उसमें दृढ़ता लाना है। किन अभ्यासों के द्वारा? आप ये देख सकते हैं, एक अभ्यास, सुंदर अभ्यास जो बाबा कहते हैं कि ये शरीर सर्प है, इस सर्प के अंदर आत्मा मणि है ना? ये देखिए, यदि किसी शरीर की ओर आकर्षण हो रहा है मेरा, तो एक शरीर के अंदर जैसे सांप बैठा हुआ है, बहुत ही खतरनाक सा सांप है। अब यदि मैं उस शरीर रूपी सांप को टच करूंगा तो सांप मुझे आशीर्वाद देगा, जीते रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद देगा सांप मुझे। कभी आपने देखा है कि किसी ने सांप को प्यार किया हो कि हाँ आ जाओ तो बड़े अच्छे सांप हो, बड़े प्यारे सांप हो, मेरी गोद में आ जाओ, मेरे गले से लिपट जाओ। देखा है आपने किसी को ऐसे सांप को प्यार करते हुए? नहीं ना, ये देह भी तो सर्प है। तो यदि उसकी तरफ मेरी दृष्टि गई, मैं तुरंत ये संकल्प करूं वहां अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप बैठा हुआ है ना, उसे टच करना अर्थात उसका विष अपने अंदर ग्रहण करना। और बाबा का महावाक्य है, बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, बाबा ने कहा है जैसे स्थूल अग्नि किसी भी चीज को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे काम की अग्नि तुम्हारे पुण्य को जलाकर नष्ट कर देती है। कितनी गहरी बात है। सुबह जिस लीकेज की बात हम कर रहे थे कि हम इतनी त्याग, तपस्या, सेवा, साधना सब कर रहे हैं, आखिर लीकेज कहां से हो रही है? बाबा के इस महावाक्य पर विचार कीजिएगा, जैसे स्थूल अग्नि किसी स्थूल चीज को जला के नष्ट करती है, तुम्हारे अंदर यदि काम की अग्नि है वो तुम्हारे पुण्य को जलाकर नष्ट करती रहती है। क्यों हम अपने पुण्य को जलाएं, क्यों खाली हो जाए? इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई से हम जमा कर रहे हैं कुछ, और वो इस द्वारा नष्ट हो रहा है। तो अंडरलाइन विशेष इस चीज को करना है। बाबा हमेशा कहते हैं इस धारणा में तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना है। तो पहली बार ये एक विशेष अभ्यास करेंगे। लौकिक में भी यदि आप देखें पवित्रता के रूप से, तो बहन कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, मेरी बहन, मेरी लौकिक बहन कितनी भी ब्यूटीफुल होगी, मिस वर्ल्ड होगी, लेकिन मेरी दृष्टि उसके लिए कभी खराब नहीं होती। मेरी बहन है, मैं उसके साथ खेलता हूं, खाता हूं, गाता हूं, सोता हूं, सब चीजें करता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में कभी भी अपवित्र भाव नहीं आता, क्योंकि मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है। फिर भी मेरा भाई कितना भी हैंडसम क्यों ना है, लेकिन क्या मेरी दृष्टि अपने भाई के लिए खराब होती है? कभी नहीं होती ना, क्योंकि मेरा भाई है। तो बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया है, इस संसार में जितनी भी बहने हैं वो सब तुम्हारी बहने हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां हैं। जितने भी भाई हैं वो तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार है ना। तो जैसे स्थूल में, लौकिक में एक दूसरे के लिए भाई बहन की दृष्टि गलत नहीं होती, वैसी ही मुझे अपनी दृष्टि को इस भाव से, इस संकल्प से भी शुद्ध करना है, पवित्र करना है। मैंने अपनी डायरी में शुरुआत में एक बाबा की टचिंग से ही एक स्लोगन लिख के रखा था, जो बहुत ही गहन है, मुझे गहन लगता है, आप सबको भी इस पर विचार करना है। वो स्लोगन ये था, तुम्हारी 5 मिनट की कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकारमय बना सकती है। क्षणिक कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकार में बना सकती है। अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि जो क्षणिक आनंद तुम्हें भासता है नहीं भासता है, तुम्हें वो चाहिए, या पूरे 5000 वर्ष का जो आनंद परमात्मा तुम्हें देने के लिए आए हैं वो चाहिए। एक ही चीज तो भगवान ने हमसे मांगी है ना, हमारी अपवित्रता। एक ही चीज मांगी है हमसे भगवान, जो सबको देने वाला है, दाता है, विश्व का कल्याण करने वाला है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं भगवान को कुछ दूंगा, लेकिन भगवान ने हमसे कुछ मांगा है, हमारी अपवित्रता। क्यों ना आज हम जैसे भी हमारे मन में, संकल्प में, वाणी में कभी भी ये चीज आ जाती थी, आज इस भट्टी से हम ये दृढ़ संकल्प करें अपनी अपवित्रता को संपूर्ण रूप से बाबा को अर्पित करके ही जाएंगे, दर्द करेंगे, लेकिन अपने इस धारणा को, अपने इस धर्म को स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि यही वो धारणा है जो सारे संसार के सामने परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। और जितने भी मठ पंथ हैं आप देख रहे हैं, हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये एक धारणा है जो बाबा के बच्चों को भी और हमारे इस विश्वविद्यालय को बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला है। तो हम इस धारणा को स्ट्रांग करेंगे। तो चौथी बात अंडरलाइन करेंगे, ब्रह्मचर्य जो हमें ब्रह्मा बाप समान बनाने वाला है, उनके समान शिखर पर ले जाने वाला है। एक बहुत सुंदर बात आती है, स्टोरी आती है, आपके ध्यान में ये बात रहे, आपने देखा होगा। उस स्टोरी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी कहीं पे भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आपने देखा होगा जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जो पवित्र स्थान है वो सुरक्षित रहते हैं। भुज में भी भूकंप आया, हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी, हमारा जो बाबा का घर है पूरी तरह सुरक्षित था। आपने केदारनाथ में भी, केदार घाटी में देखा, बाकी सब चीज बह गई भले, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। क्यों होता है ऐसा? वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है, ये पाया है कि चूंकि इन स्थानों पे पवित्र वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए ये पवित्र वाइब्रेशन उस स्थान की रक्षा करते हैं, वहां के लोगों की रक्षा करते हैं। तो जब हम पवित्र बन जाएंगे तो न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि हमारे आसपास के लोग भी विनाश काल में सुरक्षित रहेंगे। तो पवित्रता मेरी सेफ्टी का साधन है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो, पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। हम अपनी पवित्रता की रक्षा करें, जैसे हम अपने धन की रक्षा करते हैं, अपने जेवरातों को हम फेंक तो नहीं देते ना, माला मैंने पहना हुआ है, रिंग पहना हुआ है, चैन पहना हुआ है, मेरा वॉलेट है जिसमें पैसे रखे हुए, मैं उसकी रक्षा करता हूं ना, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है। ये पवित्रता भी मेरी संपत्ति है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। स्टोरी ये है, स्वर्ग में देवी देवताएं होते हैं आप जानते हैं, और शास्त्रों में दिखाते हैं कि असुरों और देवताओं का युद्ध होता रहता था, होता नहीं है लेकिन शास्त्रों में ये दिखाते हैं। तो एक बार असुरों ने आक्रमण करके स्वर्ग को जीत लिया, और स्वर्ग को जीतने के बाद असुरों का राज्य हो गया वहां। प्रचंड असुर था जो बहुत प्रतापी था, उसने स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को बेदखल कर दिया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब देवताएं भटकते भटकते अपने गुरु के पास पहुंचे, कहा गुरुदेव कैसे हम स्वर्ग का राज्य भाग्य फिर से प्राप्त करें। तो उनके गुरु ने इंद्र जो स्वर्ग के राजा दिखाते हैं उन्हें कहा कि तुम ऐसा करना कि जो प्रचंडासुर है ना असुरों का राजा, वो है तो असुर लेकिन बहुत धार्मिक है, तुम ऐसा करना कि कल सुबह जब वो पूजा करके बाहर निकले, पूजा करके जब वो बाहर आता है तो उसके द्वार का नियम है, जो भी उसके द्वार में होता है उसे वो दान देता है, जो भी मांग ले, जो तुम ऐसा करना कल उसकी पवित्रता उससे मांग लेना, उसकी पवित्रता की शक्ति। अब इंद्र ने कहा कि मुझे पवित्रता नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे तो स्वर्ग का राज्य चाहिए, उसकी पवित्रता लेके मैं क्या करूंगा। गुरुजी ने कहा भैया तू वो कर जो मैं तेरे को करने को कह रहा हूं, तू जा। अब दूसरे दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गया प्रचंडासुर के दरवाजे पे। अब पूजा करके, वो शिव भक्त थे, पूजा करके वो बाहर निकले। उनका जो नियम था, जो ब्राह्मण थे, किसी को उन्होंने गौ दान दिया, किसी को जमीन दान दी, किसी को आभूषण दान दिए, किसी को और कुछ दान दिया, कुछ और दान दिया, लास्ट में ये बचे हुए थे। इनसे पूछा आपको क्या चाहिए ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा मुझे आपकी पवित्रता दान में चाहिए। तो था यह प्रचंडासुर असुर लेकिन बहुत बुद्धिमान था, उसे पता था कि पवित्रता की शक्ति के आधार पे ही मैंने स्वर्ग को जीता है, यदि मैं इस शक्ति को इसे दे दूंगा तो मैं स्वर्ग को गंवा दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप ये जो पवित्रता है उसे मेरे पास रहने दीजिए, इसके अलावा आपको और कोई चीज चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, आपको जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, मैं आपको दान में देता हूँ, गौ चाहिए देता हूँ, धन संपदा चाहिए मैं आपको देता हूँ। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, जो ब्राह्मण बना हुआ था, मुझे ये नहीं चाहिए, यदि आप दे सकते हैं तो केवल पवित्रता दीजिए अन्यथा मैं चलता हूं। जाने लगे वो। अब चूंकि इसके द्वार का नियम था कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, उन्होंने उसे आवाज दी कि नहीं नहीं आप आइए, मेरे दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, मैं आपको अपनी पवित्रता देता हूं। उन्होंने हाथ में जल लिया, संकल्प किया और संकल्प करके अपनी पवित्रता ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दी। जैसे ही उन्होंने अपनी पवित्रता इंद्र को दी, वैसे ही एक शक्ति ज्योति के रूप में निकल के प्रचंडासुर से जाने लगे इंद्र के पास। प्रचंडासुर ने कहा कि मैंने तो केवल अपनी पवित्रता दी थी, तुम कौन हो जो निकल के जा रही हो? उसने कहा कि मैं शांति हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। दूसरी भी ज्योति निकल के जाने लगी। प्रचंडासुर ने कहा तुम अब कौन हो, क्यों जा रही हो? उसने कहा मैं सुख हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा मैं सत्य हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा मैं समृद्धि हूं। पांचवी ज्योति निकली, उसने कहा मैं स्वास्थ्य हूं, जहां पवित्रता रहेगी वहीं हम रहेंगे। तो जहां पवित्रता है वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं सत्य है, वहीं समृद्धि है, वहीं स्वास्थ्य है। जब ये पांचों निकल के चले गए इंद्र के पास, तो प्रचंडासुर ने कहा कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे हैं, आप कौन है, कृपया अपना परिचय दें। तो फिर इंद्र ने अपना परिचय दिया। तो प्रचंडासुर ने कहा जब ये सब चीजें आपके पास चली गई हैं पवित्रता के साथ, तो अब मैं स्वर्ग पे राज्य करने का अधिकारी नहीं रहा, अब आप ही स्वर्ग के राज्य को संभालें। तो जहां पवित्रता होगी वहीं स्वर्ग का राज्य भाग्य होगा। यदि पवित्रता में कमी है तो हम त्रेता में आने के लिए तैयार रहें, क्योंकि राम या सीता उनको सभी सब्जेक्ट में कम मार्क्स दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में भी कमी है तो वो जा करके त्रेता में आ जाते हैं। हमें इसलिए अपनी पवित्रता को, अपने ब्रह्मचर्य को अंडरलाइन करना है। तो चौथी चीज ब्रह्मचर्य, और पांचवी बात जो ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा आचरण। ब्रह्मा आचरण, जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण वैसा ही मेरा आचरण। ज्यादा विस्तार मैं इसे नहीं दूंगा, केवल एक चीज आप लोग अपने ध्यान में रखें, कोई भी संकल्प करने से पहले, कोई भी बोल बोलने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले जस्ट इतना विचार कर लें, यदि बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते, यदि बाबा इस स्थान पे होते तो क्या सोचते, बाबा मेरी जगह होते तो क्या बोलते, बाबा मेरी जगह होते तो कैसे कर्म करते। बस इतना यदि आप सोचते हैं, आपके कर्मों में वो डिविनिटी आती जाती है। बाबा ने कहा है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी करो, बस ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो तो ब्रह्मा बाप समान बनते चलेंगे। और बाबा ने अपने एक संदेश में ये बात बहुत अच्छे से हम लोगों को पक्की कराई। बाबा ने संदेश ये भेजा, जैसे पहले संदेश की मैं बात कह रहा था कि कौन आके सबसे पहले बाबा को ये खुशखबरी सुनाएगा, उसी संदेश में आगे बाबा ने कहा बाबा एक वर्ड कैंसल कर रहे हैं और वो वर्ड है बिकमिंग, अर्थात मैं बन रहा हूं। हम कहते हैं ना कि मैं बन रहा हूं, बाबा अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो हम पवित्र बन रहे हैं, अभी तो हम आपके समान बन रहे हैं, अभी हम बने कहां हैं। बाबा ने कहा इस वर्ड को बाबा कैंसल कर रहे हैं, कोई भी अब ये ना बोले कि मैं बिकमिंग अर्थात मैं बन रहा हूं। कब बनोगे? 80 साल होने को हो गए ना, कब बनेंगे? इसलिए बाबा ने कहा अब ये कहो आई एम, अर्थात मैं हूं, मैं बाप समान हूं, मैं बाप समान फरिश्ता हूं, मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं, मैं बाप समान सारी संसार का उद्धार करने वाला हूं, मैं बाप समान बन गया हूं। इस फीलिंग को लेकर के इस भट्टी से जाएंगे, मैं हूं जैसे मेरे पिता हैं वैसा ही मैं हूं। और इन पांचों बातों को बहुत गहराई से अपने जीवन में, अपने आचरण में और अपने संस्कारों में शामिल करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम बाप समान बनेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे और बाबा को ये खुशखबरी दे पाएंगे कि हाँ बाबा अब हम आपके समान बन गए। ठीक है, और साथ ही साथ इसे अपने जीवन में लाने का भी विषय है। चले फिर इन पांचों बातों को गहराई से अपने अंदर समाएंगे योग के साथ।